ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா சாப்டர் 2 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 2. ஆஜ் சே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஹமே ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கா பான் அப்னே முகாரவிந்த் சே கர்வாயேங்கே. ஔர் க்யூன்கி பகவான் ஆத்யாத்மிக் ஹேன் ஔர் ஹம் அபி பௌதிக் தராதல் பர் ஹேன், இஸ்லியே ஹம் சமர்த் நஹி ஹேன் கி பகவான் கே வச்சனோ கோ கிரஹண் கர் சகே. உன் பவித்ர வச்சனோ கோ கிரஹண் கர்னே கே லியே கிருபா கி ஆவஷ்யக்தா ஹே, ஔர் கிருபா ப்ராப்த கர்னே கே லியே சமஸ்த இச்சாவோ வாசனாவோ ஔர் பௌதிக் ஜித்னி பி ஹமாரே அந்தர் லால்சா ஹே, ஜோ பி சோச்சே ஹேன், ஜோ பி ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேன், ஜோ பி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹேன், உன்கோ சைட் மே ரக்கர் பிரேம் ஔர் ஸ்ரத்தா சே மங்கள் ஆச்சரண் கரேங்கே, தாக்கி ஹம் ஜோ படனே வாலே ஹேன் உஸ்கா பூரா பூரா லாப் ப்ராப்த கர் சகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுரோன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாஷ ஸ்ரீ ரூபம் சாகர ஜாதம் சஹ கண ரகுநாதன்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விசாகன்விதாஷ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜரக்ததே கோபேஷ கோபிக காந்தா ஸ்ரீ ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சனம் கௌரங்கே ஸ்ரீ ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சூதி தேவி பிரணமாமி ஹரி ப்ரியே. வம்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா மாத கீ ஜெய். தூசரே அத்யாய் கே பஹலே ஸ்லோக் மே கிஸ்னே போலா தா, சஞ்சய் நே க்யா பதாயா தா, சிச்சுவேஷன் பதாயி தி கி அர்ஜுன் கி ஸ்திதி க்யா ஹே, க்யா பதாயா தா, தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணாங்குலக்ஷணம் விஷீதந்தம் இதம் வாக்யம் உவாச மதுசூதன். அர்ஜுன் கோ ஜப் அஸ்ருபூரித் நேத்ரோ சே தேகா, ஷோக் யுக்த தே, கருணா சே நிடால் தே, உஸ் சிச்சுவேஷன் மே அர்ஜுன் கோ தேகா, ஃபிர் கிஸ்னே கஹா உவாச மதுசூதன. மதுசூதன் யே தோ சஞ்சய் நே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோ சம்போதன் தியா தா மதுசூதன் கா. லேகின் ஆஜ் வேத்யாஸ் ஜி தூசரே ஸ்லோக் மே கேதே ஹே, ஸ்ரீ பகவான் உவாச. இத்தனா சுந்தர் சம்போதன், இத்தனை சுந்தர் சப்தோ மே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கா நாம். மத்லப் அபி தேகோ, அகர் ஹம் தோடா பீச்சே ஜாயே பகவத் கீதா மே, ஜப் திருத்ராஷ்டிர நே பஹலா ஸ்லோக் போலா தோ கஹா கயா धृतराष्ट्र उवाच। उसके बाद दुर्योधन ने जब सेना के बारे में बताया तब किसने कहा, दुर्योधन ने कहा था ना, वो संजय, संजय ने बताया था, संजय उवाच। जब अर्जुन बोलता है तब बोलते हैं अर्जुन उवाच। अब जब कृष्ण बोल रहे हैं, सबको खबर है ना कि कृष्ण का नाम कृष्ण है, तो यहाँ पर अगर कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है, जिस तरह दूसरों का नाम लिया गया, तो इनको भी ऐसे बोलना चाहिए ना, श्री कृष्ण, ऐसे कृष्ण उवाच, जैसे संजय उवाच बोला गया, अर्जुन उवाच बोला गया, तो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए था, अगर कृष्ण साधारण होते तो यहाँ पर वेदव्यास जी कहते कृष्ण उवाच। लेकिन वेदव्यास जी पहले ही इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो अब बोल रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है, श्री भगवान उवाच। ये साक्षात परम पुरुष भगवान बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। और इसी चीज को श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या किया है, जब आप पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। आगे श्लोक पढ़ते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कुतस्त्वा, किधर से, भगवान ने कहा कहां से आया, क्या क्या कहां से आया, तो भगवान कह रहे हैं कुतस् यानी कहां से, तो मतलब तुम्हारे अंदर, क्या कहां से आया, कल्मश, कल्मश है ना, कल ये जो लिखा हुआ ना, कुतस्त्वा कश्मल अमेदम, कश्मल का मतलब होता है गंदगी, अज्ञान, जो खराब चीज होती है ना उसको बोलते हैं कश्मल अमेदम, इदम मतलब ये वाला कौन सा, मतलब भगवान कौन सी गंदगी की बात कर रहे हैं, तो वो गंदगी जो कि अर्जुन ने अपने मुख से पहले अध्याय में उगली है, यानी कि जो ये देहात्म बुद्धि के विषय में बताया ना कि ये सब मर जाएंगे और हमारे सबकी हानि होगी, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने जो अभी बोला वो तो मुझे गंदगी लग रही है, कश्मल लग रहा है, वो तुम्हारे अंदर आया किधर से। आगे बोल रहे हैं विषमे मतलब इस विषय, इस विषम अवसर, यानी कि अब अवसर क्या था, सिचुएशन क्या थी, अर्जुन क्षत्रिय था और सामने युद्ध करने के लिए उसको ललकारा जा रहा था, उस टाइम पर एक क्षत्रिय का केवल एक ही फर्ज, एक ही कर्तव्य होता है कि वो लड़ाई करे, और अर्जुन क्या बोल रहा था, नहीं भाई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं तो अपने धनुष बाण एक साइड पर छोड़ दूंगा और बगैर निहत्था बैठ जाऊंगा, भले मुझे है ना धृतराष्ट्र के बच्चे मार के चले जाए। तो भगवान बोल रहे इस, ये तो इस टाइम पर तुम्हारे अंदर इसी गंदगी आई किधर से। आगे बोल रहे हैं विषमे सम उपस्थितम, सम उपस्थितम मतलब किधर से तुम्हारे अंदर कैसे आया, और आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अनार्य जुष्टम, अनार्य मतलब वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं, मतलब जो अनार्य, आर्य होते हैं ना वो सभ्य लोग होते हैं, सिविलाइज लोग होते हैं जो अपने कर्तव्यों को जानते हैं, और अनार्य लोग होते हैं जो अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझते हैं। जुष्टम मतलब आचरित, अनार्य जुष्ट, ये जो आपने जो अभी बातें कही है ना कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, भले मुझे मार के चले जाए, मैं भीख मांग कर गुजारा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, संसार की राजाई भी नहीं चाहिए, मैं बस लड़ाई करूंगा ही नहीं, ये तो अनार्य जुष्टम है, मतलब ये तो ऐसा कार्य है जो सभ्य लोग नहीं करते, जो अच्छे लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए जो अपने कर्तव्य को समझते हैं। और आगे तो भगवान श्री कृष्ण ने हद्दी कर दी, वो बोलते हैं अस्वर्ग्यम, ये तो अच्छे लोग करते नहीं है और ये उच्च लोग को नहीं लेकर जाएगा, तुम ये मत समझना कि तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम अपराध से बच जाओगे और तुम स्वर्ग में चलो जाओगे, और सब लोग बोलेंगे कि वाह वाह अर्जुन कितना अच्छा इंसान था, उसने लड़ाई भी नहीं की, युद्ध भूमि में गया मगर अपने शत्रुओं को माफ करके चला आया, वाह वाह कितना अच्छा अर्जुन था, ऐसे नहीं बोलेंगे। आगे भगवान कहते हैं अकीर्ति, यानी अकीर्ति, देखो कीर्ति का मतलब होता है यश, या आपको है ना कोई आपकी वाह वाह करता ना वो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकीर्ति, ये जो कार्य आप कर रहे हो ना उसमें आपकी कोई कीर्ति नहीं होगी, कोई आप ना आपको अच्छा नहीं बोलेगा, अपयश होगा, यश नहीं प्राप्त करोगे। अकीर्ति करम,
कारण बनेगा। ये जो आप सोच रहे हो ना कायरता करने के लिए, वो ना आपको स्वर्ग प्राप्त कराएगी और ना ही कीर्ति होगी और ना ही आप कोई आर्य लोग इस तरह के काम करते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी बातें सोचने में आई कैसे हे अर्जुन? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पछाड़ दिया। मतलब अब अर्जुन ने इतना सारा भगवान को ज्ञान बताया था पहले अध्याय में कि देखो मैंने गुरु परंपरा से सीखा है कि यदि किसी समाज में अगर बड़े लोग मर जाते हैं तो फिर सारा समाज जो है वो अधर्म की ओर बढ़ता है और इस तरह से सब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं मिलता है, इसकी वजह से पितर भी है ना परेशान हो जाते हैं। इतना सब अर्जुन ने बताया और फिर ये भी बताया कि हमें गुरु लोग के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों के साथ तो वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए और आप लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें बताई ना। अब कोई इतनी अच्छी अच्छी बातें किसी को बताता है जो ज्ञान वाली होंगी, किसी बड़े को बताए और वो बोले तुम्हारे अंदर ये गंदगी आई कहाँ से? मतलब वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने इसको इतनी अच्छी बातें बताई हैं। अब जाहिर सी बातें मैं मुझे अप्रिशिएट करेगा कि हाँ भाई तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छा सोच रहे हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फौरन से कहा, भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कहाँ से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मौल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। पूर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बोला और जब अर्जुन को भगवान ने ऐसे बोला होगा तो अर्जुन की क्या कंडीशन होगी कि मैंने इतना अच्छा अच्छा भी भगवान को बताया, ये भगवान मुझे कृष्ण मुझे ये से क्यों बोल रहे हैं? ये तो अब आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। आज इस श्लोक में जब मैंने ये पहली बार श्लोक पढ़ा था ना तो तात्पर्य मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि इस तात्पर्य में जो अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा ना कि ये कलमश तुम्हारे अंदर आया किधर से, इसकी एक भी बात शुरू में नहीं बताई श्री प्रभुपाद ने। मुझे मैं सोचती थी कि इसमें ये बातें कही होंगी कि अर्जुन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह की बातें लिखी होंगी। लेकिन आप पढ़ो देखो क्या लिखा है तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, यानी कि भगवान और कृष्ण दो नहीं है एक ही है, इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा गया बल्कि क्या कहा गया, भगवान ही कहा गया। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, यानी कि भगवान जो है वो परम सत्य की पराकाष्ठा, यानी कि परम सत्य के दूसरे भी फेस हैं, लेकिन जो हाईएस्ट फेस है भगवान की, जो हाईएस्ट अनुभूति है परम सत्य की, वो कौन है, भगवान है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, यानी कि परम सत्य जो है, जो आला कामिल सच जिसको बोलते हैं, वो उसको तीन अवस्थाओं में समझा जा सकता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, यानी कि एक तो ब्रह्म है जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह पर होता है, वो भगवान की अनुभूति है, परम सत्य की अनुभूति। एक तीन फेज में भगवान को जाना, परम सत्य को तीन फेज में जाना जा सकता है। पहला है ब्रह्म, जो निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान निराकार है और समस्त जगहों पर फैला हुआ है। दूसरा है परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, यानी कि एक तो वो ब्रह्म जो सारे संसार में फैला हुआ है, उसका कोई स्वरूप नहीं, लेकिन उससे आगे निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं उसका स्वरूप तो है लेकिन वो कहाँ रहता है, सबके हृदय में रहता है और उसका नाम है परमात्मा तथा भगवान। और उसके बाद एक तीसरा फेस है, वो भगवान या श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण, ये तीन फेज बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कैचमलविधम की कोई बात नहीं आई ना, तो मैं सोची थी श्री भोपाल जी किस चीज की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी श्री भोपाल यहाँ पर जो है ना मेन चीज ये नहीं है कि क्या कहा है, क्या कहा तो वो तो सारी भगवद गीता में बताया जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, मेन तो ये है जो कह रहा है उसकी असलियत क्या है, वो जो बोल रहा है वो कौन है। तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जो शुरू शुरू में लिखा हुआ ना श्री भगवान वाच, तो श्री प्रभुपाद जी पहले उस भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, उस भगवान को हमें समझा रहे हैं कि जो भगवान होते हैं परम सत्य हैं, और उसको जो तत्वज्ञानी लोग होते हैं और शास्त्र जो हैं उनको तीन फेसेस में जानते हैं। एक तो निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, दूसरे परमात्मा जो सबके हृदय में वास करते हैं, और दूसरा तीसरा कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और इस चीज को श्री प्रभुपाद जी अपनी मर्जी से नहीं बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। ये शास्त्र का प्रमाण देकर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम जो भगवान को मान रहे हैं कृष्ण को, ये कोई हमारी मर्जी से हमने कोई नया धर्म बना लिया है और बस कृष्ण की विग्रह रख दी और कहते हैं यही भगवान है। ये हमारे मनमानी, ये हम भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की, यह तो शास्त्र अनुमोदन है। और श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में भगवान के विषय में क्या बताया गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये समझ में आ जाएगा ना, ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक समझ में आ जाएगा, तभी हम भगवद गीता के अन्य श्लोक पर श्रद्धा रख सकेंगे। श्रद्धा तभी हो सकती है जो बोल रहा है ना उसके ऊपर अगर श्रद्धा होगी ना, तभी उसके वचन के ऊपर भी श्रद्धा होगी। लेकिन अगर जो बोल रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसने क्या बोला उसमें क्या इंटरेस्ट होगा। कुछ लोग कृष्ण को नहीं मानते तो फिर कृष्ण के वाक्य को वो कैसे इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद हमें बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण के विषय में बताएंगे कि वास्तव में कृष्ण जो बोल रहे हैं वो कौन है। तो भागवतम महापुराण 1.2.11 में कहा गया, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। अब यहाँ पर बताया वदन्ति, वदन्ति का मतलब है बोलते हैं। कौन बोलते हैं, तत् कैसा बोलते हैं, तत्वविदस। तत्वविदस मतलब जो तत्व को जानते हैं, जो तत्ववेता लोग हैं, जो वास्तव में शास्त्र को जानते हैं वो कैसे बोलते हैं, तत्वविदस तत्वम। वो इस तत्व के विषय में कैसे कहते हैं, यज ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, ये जो तत्व का ज्ञान है ना, वो अद्वयम। अद्वयम का मतलब है अद्वितीय है, उसके जैसा जो भगवान है उसके जैसा और कोई नहीं, अद्वयम है, ये द्वैत नहीं है। देखो अद्वयम का क्या मतलब है, द्वी का मतलब होता है दो और अद्वयी का मतलब होता है एक, यानी कि ये जो भगवान है वो दो नहीं हो सकते, ये केवल एक ही है। तत्व को जानने वाले कहते हैं भगवान दो नहीं है, एक ही है भगवान, वो जो एक है यानी वन मैन शो है, ये एक ही है और यही पूर्ण ज्ञान है। यद ज्ञानम अद्वयम, ये जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब हमें ये पता चलता है कि भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं हो सकते। लेकिन उसके फेसेस अलग अलग हैं, वो कैसे हैं आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। ब्रह्मेति पहला फेज है उनका, मतलब भगवान को इन तरीकों से जाना जा सकता है। जो तत्ववेता है ना वो बोलते हैं वास्तव में तो वो एक है, लेकिन ब्रह्मेति, कुछ लोग उन्हें ब्रह्म समझते हैं, निराकार समझते हैं, और आगे परमात्मेति, कुछ लोग उन्हें परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में व्याप्त देखते हैं, और आगे कहा भगवान इति शब्दते, और कुछ लोग कहते हैं कि वो तो भगवान है और लीला करते हैं, उनका अपना लोक है, उनका अपना स्वरूप है और इस संसार में वो आते हैं लीला करते हैं। यानी कि भगवान के ये तीन फेस बता रहे हैं, कौन कौन से, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन तो रेज होता ही है कि ये तो बिल्कुल सही है, कुछ लोग ब्राह्मण मानते हैं, निराकार मानते हैं, कुछ साकार मानते हैं, कुछ परमात्मा मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि इन तीनों में से मुख्य कौन सा है, इन तीनों में से सही कौन सा है। वो हम अपनी बुद्धि से तय नहीं करेंगे, वो कौन तय करेगा, जो शास्त्र में लिखा है ना वही सत्य होता है। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, यानी कि जो परम सत्य को जान चुके हैं वो परम सत्य, यानी जो परम सत्य है उसको किस तरह से अनुभव करते हैं, तीन अवस्थाओं में, तीन टाइप से उसको जान सकते हैं। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, यानी कि ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही साथ विद्यमान है, और वो है ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। यानी कि भगवान ये जो परम सत्य है उनको तीन अवस्थाओं में आप समझ सकते हो। पहला क्या है? ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान के रूप में इसको समझ सकते हो। अर्चन प्रभा जी कहते हैं इन तीन पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है क्योंकि उसके भी तीन विभिन्न विभिन्न पक्ष होते हैं। श्रभुपा जिसको इतना आसान तरीके से समझाएंगे कि हम सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। श्रभुपा जी बोलते जिस तरह सूर्य होता है ना, वास्तव में सूर्य होता है और उसके भी तीन अलग अलग पक्ष है। कैसे है? यथा धूप, पहला उसका धूप। जो लोग सूर्य को नहीं जानते हैं वो भी धूप को तो देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे होंगे अभी तक बाहर नहीं निकले घर से, कभी सूर्य को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन धूप की एक धूप तो उनके घर पे एक छोटी सी अगर लाइन आ रही है तो बोलेंगे हाँ ये क्या है, ये सूर्य है। इस प्रकाश को ही वो सूर्य समझते हैं। और दूसरा नंबर एक तो धूप हो गया और सेकंड है सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। एक तो सूर्य की सतह यानी कि जो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना बच्चे अगर, तो वो बालकनी में जाके देख सकते हैं कि नहीं ये धूप सूर्य नहीं है, वो जो सामने चमक रहा है ना गोल गोल थाली के जितना है और उसमें से शाइन आ रही है, उसमें से रेज आ रही है, वास्तव में वो सूर्य है। वो ये सोचेंगे ना कि जो सामने नजर आ रहा है उसके विषय में कुछ जानते नहीं है, बस बोलते हैं ये धूप सूर्य नहीं है, ये धूप तो उसका प्रकाश है, सामने जो सूर्य नजर आ रहा है ना वो वास्तव में सूर्य है। और आगे बताया सूर्य लोक, सूर्य लोक का मतलब होता है जो सूर्य लोक में जाए और वहां पर जाके देखे कि हाँ सूर्य तो स्वयं इतना बड़ा लोक है, उसका सूर्य का देवता है, उसका पूरा वहां पर खानदान है, पूरा ये कोई ऐसी नहीं है कि खाली एक दूर से चमकता हुआ गोला है, ये तो पूरा लोक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन रहता है, ये सब अगर जानता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नव सिख्या है। यानी कि जो सिर्फ प्रकाश तक ही सूर्य को समझता है, जो ये समझता है कि सूर्य खाली प्रकाश ही है, वो तो अभी नया नया स्कूल में दाखिल हुआ है, नव सिख्या है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है। यानी कि जो देखता है कि नहीं ये धूप तो सिर्फ सूर्य का प्रकाश है, सामने जो चमक रहा है ना वास्तव में वही सूर्य है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो थोड़ा बड़ा हुआ है, यानी कि उसकी थोड़ी एजुकेशन ज्यादा हो गई। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। और जाहिर सी बात है जिसने सूर्य लोक में प्रवेश कर दिया है और सूर्य के विषय में जिसको पूरी जानकारी है कि सूर्य का रूप कैसा है, सूर्य का रंग कैसा है, उसके अंदर कैसे कैसे लोग रह सकते हैं, सूर्य का वो रथ कैसा है, सूर्य की गति कैसी है, जो सब कुछ समझ सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है। जो नव सिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म के रूप को ही समझ सकता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसकी विश्वव्याप्ति तथा यानी कि जो नया नया अभी आता है ना, नया नया अभी तक ज्ञान में आया है, नव सिख्या सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान को ही जो समझता है कि जो सूर्य है उस सूर्य नहीं समझता, लेकिन जो धूप है उसके प्रकाश जो निकल रहा है वही सब कुछ है, ये प्रकाश ही सूर्य है। और ये वो समझता है कि प्रकाश के अतिरिक्त ज्योति के अतिरिक्त और सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसके ज्ञान उसी से वो संतुष्ट रहता है, वह उस व्यक्ति के समान है। किस व्यक्ति के समान है? जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है, जो समझता है कि वास्तव में भगवान कुछ नहीं है, जो ये जो ब्रह्म तेज होता है ना, जो ब्रह्म पुंज जिसको बोलते हैं ज्योति, निराकार ज्योति, वो ही सब कुछ है। तो ईश्वर ब्रह्मा जी बोलते हैं जो अभी तक सिर्फ सूर्य को नहीं समझा है, सिर्फ सूर्य की किरणों को समझा है, वो इसका ज्ञान वैसा ही है। जो अभी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, परम सत्य के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि परमात्मा तो सिर्फ ब्रह्म ही है, सिर्फ रोशनी है। और आगे जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, यानी उससे भी थोड़ा अधिक जिसको ज्ञान होता है वो क्या सोचता है, सूर्य के गोले के विषय में जानता है। और आगे वो उसकी तुलना श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा रूप से की जा सकती है। जो ये सोचते हैं कि परम सत्य क्या है, परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठा, यानी कि कुछ तो माना उसके विषय में, वरना वो तो खाली बोल रहा था कुछ नहीं, खाली ज्योति है, लेकिन ये फिर भी कुछ तो मान रहे हैं कि वो है, उसका एक स्वरूप है जो समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, वो सेकेंड नंबर का। और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है, यानी कि जो सूर्य के अंतर में प्रवेश कर सकता है, जो सूर्य के विषय में हर चीज जान लेता है, जो ये जानता है कि सूर्य का देवता कौन है, सूर्य का लोक कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, जो सूर्य के विषय में हर बात आपको बता सकता है, उसकी तुलना किसमें की जाती है, वो उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करे, यानी कि जो परम सत्य को बिल्कुल सही तरह से समझ सकता है कि परम सत्य का रूप कैसा है, उसकी लीलाएं कैसे हैं, वो संसार में कैसे आता है, जो सब कुछ बता सकता है, वो उसकी जो जानकारी है वो एकदम परफेक्ट है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं, यानी कि वास्तव में अगर कोई आध्यात्मवादी है रियल में तो वो हैं जिन्होंने भगवान के, जिन्होंने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, जिन्हें ये पता है कि जो निराकार ब्रह्म है और जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में समाया हुआ है वो वास्तव में कौन है, भगवान श्री कृष्ण, जो ये समझ लेता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वही जो है वो सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सब अलग अलग चीज को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी तो एक ही चीज को कर रहे हैं, एक ही विषय के विद्यार्थी हैं और एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोग भी भीतरी बातें, यानी कि जो अंदर सूर्य लोग के हैं, एक तो उसका प्रकाश, दूसरा उसका गोला, और उसके अंदर प्रवेश करने के बाद जो कुछ रियलिटी सामने आती है, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, यानी कि जो भी इनमें से कोई भी ना सूर्य प्रकाश को इनकार कर सकता है, न सूर्य के जो दूर से नजर आ रहा है सूर्य का गोला उसको इनकार कर सकता है, और न ही सूर्य के लोग को इनकार कर सकता है, ये सब उसको मानने पड़ेंगे। इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होंगे, अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तीनों को जो जान रहे हैं उनके जो जानकार है, जो अलग अलग तरीके से जानते हैं, उनको एक ही स्टेज पे तो नहीं खड़ा किया जा सकता ना, कि एक ही है, भले वो सूर्य की धूप को समझ रहा है कि सूर्य है, या सूर्य के जो गोले को समझ रहा है कि ये सूर्य है, या वास्तविक जो सूर्य के विषय में सब कुछ जानता है, उनको एक ही स्टेज पे नहीं खड़ा किया जा सकता, वो तीनों अलग अलग स्टेज पे है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्द बता रहे हैं कि संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है, यानी कि जो भगवान हम पढ़ रहे हैं ना, आज भगवान के विषय में बताने श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के विषय में मैं नहीं बता रहा हूँ, वेद व्यास के पिताजी। अब वेद व्यास कौन है, जिन्होंने समस्त शास्त्रों को लिखा है, और इनके पिताजी पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, क्या बताया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनामभद इति गणा, कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में भगवान के विषय में बताया कि समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता, यानी जिसके अंदर पूरा, जिसके पास पूरा का पूरा धन हो, पूरी की पूरी शक्ति, पूरा का पूरा यश, पूरा का पूरा सौंदर्य, पूरा का पूरा ज्ञान और पूरा का पूरा त्याग हो, वही भगवान कहला सकता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी, अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत सुंदर और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति, सारा सारा आदि आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यमान नहीं है, अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है। अब यहाँ पर श्री बाबा जी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कृष्ण ही दावा कर सकता है कि सबका सब मेरे पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कृष्ण का भगवान होना श्री प्रभुपाद ने डिक्लेयर किया है। पहले तो अभी यहाँ पर पहले तो बताया गया कि जो तत्व अतत्व है वो उसके तीन फेज होने चाहिए, क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अभी वो भगवान कृष्ण ही है, उसको साबित कौन करेगा? यहाँ पर कह रहे हैं अतः ब्रह्म संहिता में। अब देखो शास्त्र इतने सारे हैं कि आप सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इसलिए शास्त्र में कहा गया महाजनो ये न गंता सुपंथा। जो महान लोग होते हैं वो जो कहते हैं उनकी बात को मान लेना चाहिए। तो महान लोगों में या जो बड़े लोगों में सबसे बड़े कौन है जानते हो? जितने भी प्राणी भगवान ने बनाए उनमें सबसे पहले प्राणी ब्रह्मा जी हैं। और यहाँ पर देखा गया है कि हम जब भी जो 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 जितने जिस खानदान है ना, जो भी वो जिस जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना हम गुरु वाले हैं, हम माता वाले हैं, हम देवी वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम लाल वाले, वो पता है क्यों है इस वाले इस देवी देवता वाले क्यों है? क्योंकि उनके बड़े उसकी पूजा करते थे। सही जा रही हूँ? जो बड़े जिसकी पूजा कर रहे थे उसी में बोलते हैं भाई हम इस हमारे कुल का देवता ये है, हम क्योंकि इस कुल में हम पैदा हुए हैं, हमारे कुल के जो बड़े थे वो इसी देव की पूजा करते थे, इसीलिए हम अब इसी की पूजा करेंगे, ऐसा बोलते ना। लेकिन वास्तव में पता है क्या, हम सबके अगर बड़े बड़े में देखा जाए ना, तो आपके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, ऐसे करते 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 ये श्रृंखला जाएगी कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास। तो वास्तव में हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो जिस भगवान की पूजा करेंगे ना वही हमारे कुल के भगवान हो सकते हैं, और कोई नहीं। अब ऐसा था शुरू में जब भगवान श्री कृष्ण को ही मानते होंगे क्योंकि सबको पता था, ब्रह्मा जी ने बताया, अभी भी बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती है ना, फिर एक भगवान से जब जी नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम भगवान को चेंज कर देते हैं। तो यह जो संसार है वो इतना मतलबी और खुदगर्ज है कि लोग भगवान बदल देते हैं अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े हैं, जितने भी हमारे सबसे बड़े हमारे बाप दादाओं में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी सबसे पहले पुरुष हैं। और वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का ये निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वो बता रहे हैं कि भगवान वही है, पूजा के लायक, भक्ति के लायक केवल भगवान श्री कृष्ण है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, कि ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं, मतलब ईश्वर का मतलब होता है बनाने वाला या किसी का स्वामी, वो तो कोई देवी देवता को भी बोल सकते हैं, लेकिन परमाह का मतलब यहाँ पर परम लिखा उन्होंने, बोला ईश्वरों के भी ईश्वर अगर कोई है तो कृष्ण, नाम लिख कर दिया है भगवान का कि वो केवल कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि वो सच है, चित है, आनंद है, वो रियल है, वो चेतना, वो सोच सकते हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं, वो आनंद घन है वो, और वही जो है सच्चिदानंद विग्रह है। और आगे आगे बहुत अच्छा बता, अनादिरादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है और वो सबसे पहले जीव हैं, अनादिरादि गोविंद, वही कभी सबके स्वामी हैं, सबसे बढ़कर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके तुल्य कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता उनके उनसे बढ़कर तो कोई। तो फिर आगे बताया सर्व कारण कारण, और जो भी हो रहा है उसके कारण, समस्त कारणों के कारण वही भगवान कौन है, ईश्वर परमः कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट दिया और आगे कहते हैं ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं किंतु कृष्ण परम है, यानी ईश्वर तो हो सकते हैं पर परम ईश्वर कौन है, कृष्ण, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। लेकिन अगर कोई ब्रह्म संहिता के शब्दों को नहीं समझता है तो मतलब और भी कोई प्रमाण चाहिए तो श्रवण रूपा के पास तो करोड़ों प्रमाण है भगवान कृष्ण को साबित करने के लिए। यहाँ पर कुछ तो लिखेंगे, आगे कहते हैं भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, यानी कि भागवतम में भगवान के बहुत सारे अभी पता है क्या हुआ, भागवतम में जब शुकदेव जी ने परीक्षित को भगवान के बहुत सारे अवतार बताए और साथ में बीच में बता दिया कि है ना द्वाप ऐसे बताया त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ, फिर द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ और फिर कलयुग में कल्कि के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, इस तरह बताया तो ऐसे ही सीरीज में बताते गए। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि परीक्षित महाराज ये समझ दें कि सारे अवतार इक्वल है, मतलब उनकी एक ही स्टेज है, तो उसको बताया किंतु सारे अवतारों की सूची दी, किंतु फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं मुझे कृष्ण के विषय में तो कोई और एक श्लोक ऐड करना पड़ेगा ताकि कृष्ण की महानता के विषय में वो समझ सके, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया जिनसे जिनसे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार होते, यानी कि ये बताए कि ये जो ईश्वर परमेश्वर है जिसे जिसने सारे अवतार लिए हैं वो अवतारी कृष्ण है। कब बताया? श्रीमद् भागवतम 1.3.28 ऐसे क्या कहा, एते चंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चंश कला यानी कि जो अब तक मैंने तुम्हें दूसरे दूसरे अवतार बताए थे ना, कौन से, मत्स्य कच्छप विराह वामन नरसिंह इत्यादि जो भी धन्वंतरी मोहिनी जितने भी अवतार बताए वो सब क्या है, अंश और कला है भगवान के। और आगे कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण तो साक्षात भगवान है जिनके ये सारे अवतार हैं। और आगे बताया इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे, यानी यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कला है अथवा पूर्ण कलाओं की के अंश है, किंतु कृष्ण तो स्वयं साक्षात भगवान है, अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है, यानी कि भगवान बाकी जो भी है ना, कौन कौन से तीन तेज बताए थे ना, एक तो ब्रह्म है और दूसरा परमात्मा, तो इसके बारे में बताती कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा या निर्विशेष ब्रह्म, यानी कि परमात्मा निर्विशेष जो भी है उसके उद्गम कौन है, उनकी स्टार्ट कौन है, आदि भगवान कौन है, कृष्ण है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन, अब यहाँ तक तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताए, आप सब तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हो इसलिए मजीद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में करोड़ों करोड़ों प्रमाण दिए गए हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि ये भगवान तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर इस पर किसी को संदेह है कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग तो सेम जो तात्पर्य लिखा हुआ है ना उसी को पढ़ेंगे, और आगे जो श्लोक है ना हमारा, क्या श्लोक था, कृतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरम अर्जुन, कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये कलमश आया किधर से, ये अच्छे आर्य लोगों को शोभा नहीं देता और स्वर्ग को नहीं बल्कि नीचे लोगों को लेकर जाएगा और इससे कोई भी आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, कोई भी आपका यश नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय था, क्योंकि कृष्ण सामने खड़े थे, कृष्ण और शोक ये दो जगह पर नहीं, जहाँ पर कृष्ण है वहां पर दुख नहीं होना चाहिए, तो अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। कृष्ण ने बोला आया किधर से, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारे अंदर ये गंदगी किधर से आ सकती है। जैसे कभी आप इमेजिन करो कहीं पर सूर्य खड़े हो और वहां पर एक जगह पर अंधेरा हो, सूर्य सामने प्रकाशमान हो और कहीं अंधेरा हो, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो उसी तरह कृष्ण को भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं सामने खड़ा हूँ और अर्जुन के अंदर ये कलमश किधर से आया। और आगे बताया आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अर्जुन आर्य थे, सिविलाइज थे, उनकी सभ्यता के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, तो भगवान को बहुत आश्चर्य हो रहा था। और आगे कहते हैं कि आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर करती है। यानी कि आर्य जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जो जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, और आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन जिन्होंने किया हुआ होता है, ऐसे लोग के लिए आर्य शब्द यूज होता है। तो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। देहात्म बुद्धि कौन सी होती है? जो लोग इस देह को ही आत्मा मान लेते हैं उनको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। यानी कि देह में आत्मा की बुद्धि रखना, यानी कि जो अपनी आत्मा को कुछ नहीं जानते, जो सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है और मुझे शरीर के लिए ही जीना है, उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि वाले लोग। तो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य, ये ज्ञान नहीं रहता उनको कि अब उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होगा। आत्मा पता होगा तो ही परमात्मा का उद्देश्य जानेंगे ना। अगर खुद को देह ही समझेंगे तो संसार में जो कुछ है उसी को समझेंगे कि यही हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य होते हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य या विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना होता है। वास्तव में जीवस्य तत्व जिज्ञासा, शास्त्र में आया कि तुम्हें जीवन इसलिए मिला है कि तुम परम सत्य के विषय में जानने की क्या प्रयास करो, इसलिए नहीं मिला है कि कुत्तों और जानवरों की तरह खाली आहार निद्रा भाई मैथुन में अपने इस मानव जन्म को खत्म कर लो। मानव जन्म का मेन लक्ष्य है कि आपको तत्व की जिज्ञासा, अथा तो तत्व जिज्ञासा कि जब जीवन मिलता है आपको मनुष्य का, तो आपका एक ही काम मुख्य होता है कि आप ये जानो कि मैं आया किधर से हूँ, मैं हूँ कौन और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वे भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। कौन? जो देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो नहीं जानते तत्व जिज्ञासा को। वो बस संसार में, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि होती है, उनको शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो जो बाहर के जो जगत है उसी में मोहित रहते हैं, ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो। उनको कभी उनके माइंड में ये आता ही नहीं है कि मैं इस संसार में मनुष्य देह लेकर आया हूं तो मेरा लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, उन्हें ये पता ही नहीं चलता। वो समझते ही नहीं है कि मुक्ति हासिल करनी है, वो ये सोचते हैं कि इस संसार में रहकर मैं कैसे खुश हूं। बस उनके जीवन का लक्ष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति होता है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है वे अनार्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर बताया जो संसार में आकर भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में नहीं सोचते हैं वो अनार्य होते हैं। लेकिन जिनको पता होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और संसार में आने का मेरा लक्ष्य है कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूटूं, वो आर्य होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा अनार्य दुष्टम, अच्छे लोग जो समझते हैं उन वो ये लोग है ना, इसलिए नहीं ऐसे कार्य नहीं करते हैं कि अपने कर्तव्य को छोड़ दें। तो आगे बता रहे हैं, यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि युद्ध करना। जब युद्ध की ललकार आती है, सामने शत्रु खड़े हो जाते हैं, तो उसका काम होता है कि तुम्हें लड़ाई करनी है। लेकिन वो युद्ध से विचलित होकर अपने कर्तव्य से भाग रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली है। यानी कि जो अपने कर्तव्यों को नहीं जानते ना, ऐसे लोग ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन के लिए शोभनीय नहीं था। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बन सकता है और ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। अब देखो, इंसान कोई भी कार्य करता है तो कुछ उसमें प्रॉफिट दिखता है, या तो सांसारिक प्रॉफिट हो या फिर आध्यात्मिक प्रॉफिट हो। लेकिन इसमें क्या है, अगर वो लड़ाई से हट जाता है तो भगवान यहाँ पर शपबा जी कह रहे हैं कि कर्तव्य पथ से जब ये विमुख हो जाता है तो फिर इससे ना तो उसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी और ना ही संसार में उसकी कोई ख्याति। संसार में सब लोग बोलेंगे कायर देखो भाग गया, और जब ऐसे भाग के जब बाद में मरेगा तो इसको कोई भी आध्यात्मिक जीवन में भी इसकी कोई सहायता नहीं मिलेगी आगे बढ़ने में। और आगे भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि जो तुम्हारे अंदर करुणा आ गई है ना अपने अपने रिश्तेदारों के लिए कि मैं उन्हें नहीं मार रहा हूँ, ये कोई इतनी अच्छी करुणा नहीं है तुम्हारे अंदर। ना तुम्हें संसार में सुखी सुख मिलेगा, ना ही आध्यात्मिक तुम्हें इससे कोई सुख मिलेगा, तो इसका त्याग करो। ये पहला श्लोक भगवान ने कहा, और भगवान ने पहले ही श्लोक में बता दिया उसको कि आप जो सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा वो बिल्कुल रॉन्ग है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप सब साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।